नमस्कार। आज हम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के एक लेख पर बात कर रहे हैं
जी।
शीर्षक है, अध्यात्म क्षेत्र की वरिष्ठता विनम्रता पर निर्भर है
जी।
तो ये लेख एक बड़ा दिलचस्प विचार सामने रखता है।
हाँ बिल्कुल,
कि आध्यात्मिक दुनिया में जो असली बड़प्पन है ना, वो उम्र, ज्ञान या खानदान से नहीं आता है,
सही,
बल्कि विनम्रता और चरित्र की सादगी से आता है।
हाँ, और ये विचार आज की दुनिया में जहाँ हर कोई आगे निकलने की होड़ में लगा है, थोड़ा अलग सा लगता है ना।
बिल्कुल,
लेख बिल्कुल साफ कहता है कि आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता वो विनम्रता से ही जाता है, अहंकार से नहीं।
तो क्या लेख ये कह रहा है कि बड़ा बनने की ये जो दौड़ है, चाहे वो पद की हो, शोहरत की, ये खतरनाक हो सकती है?
बिल्कुल, लेख में बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, जैसे मेंढक का हवा भरकर पेट फुलाना और फिर फट जाना।
अच्छा।
या फिर वो सुंदुपसुंद नाम के असुर थे, वो एक स्त्री के पीछे लड़कर मर गए। तो ये सब क्या दिखाते हैं, यही कि बड़प्पन का झूठा दिखावा, या फिर ये होड़, ये कैसे खुद को ही नुकसान पहुंचा सकती है।
और इतिहास में भी तो ऐसे उदाहरण हैं ना।
हाँ हाँ, इतिहास तो गवाह है।
देखिए, कौरवों का अहंकार और अपनी अलग सत्ता चमकाने की जो जिद थी,
हाँ
वही तो महाभारत का कारण बनी।
सही बात है।
और यादवों में भी देखिए, आपसी घमंड इतना बढ़ गया,
हाँ,
कि वो एक दूसरे को ही गिराने लगे और आखिरकार पूरा वंश ही खत्म हो गया।
अरे बाप रे।
हाँ, व्यास जी ने एक सूत्र दिया था, वो यहाँ बिल्कुल सही बैठता है,
क्या?
कि जहाँ बहुत सारे नेता हों, सब अपनी अपनी चलाने वाले हों, वो समूह टिक नहीं सकता, नष्ट हो जाता है।
ये तो बड़ी गंभीर बात है। तो फिर अगर कोई मान लीजिए सेवा के रास्ते पर है, लोगों की भलाई करना चाहता है,
हाँ,
उसके लिए विनम्रता कितनी कितनी जरूरी हो जाती है। देखिए, सेवा और विनम्रता तो जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेख यही कहता है कि लोक सेवक को निष्प्रिय होना चाहिए।
निष्प्रिय
मतलब किसी निजी स्वार्थ या इच्छा से परे और विनम्र। इसी में उसकी असली शान है।
हाँ।
आप भगवान कृष्ण का उदाहरण देखिए ना।
हाँ।
राजसुई यज्ञ जैसा इतना बड़ा आयोजन था और उन्होंने खुद आगे बढ़कर मेहमानों के पैर धोने का काम चुना।
वाह, ये तो अद्भुत है,
है ना।
और गांधी जी का भी जिक्र है कि वो कांग्रेस में कोई बड़ा पद न होते हुए भी,
हाँ,
सबसे ज्यादा सम्मानित थे, सिर्फ अपनी सेवा की वजह से।
बिल्कुल।
और वो राम और भरत का किस्सा, एक दूसरे को राज सिंहासन देना, ये तो विनम्रता की पराकाष्ठा है।
सही कहा। और लेख में कुछ और भी बड़े अच्छे उदाहरण है, जैसे आचार्य चाणक्य।
हाँ, चाणक्य
इतने बड़े साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे, लेकिन रहते कहाँ थे, एक साधारण सी झोपड़ी में।
अच्छा।
क्यों? ताकि उन्हें सत्ता का नशा न चढ़ जाए और उनके साथियों में भी वैसी लालसा न जगे।
ये तो बड़ी गहरी सोच है।
बिल्कुल। राजा जनक खुद हल चलाते थे, बादशाह नसीरुद्दीन वो टोपियां सिलकर अपना गुजारा करते थे। ये सब क्या थे? अपने आसपास के लोगों को सादगी और संयम सिखाने के तरीके थे।
लेकिन इसका उल्टा भी तो हुआ होगा, जब अहंकार हावी हो गया हो।
हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। राजा नहुष का किस्सा है, उन्होंने अहंकार में आकर ऋषियों से अपनी पालकी उठवाई।
अरे,
और नतीजा श्राप मिला और वो सर्प बन गए। एक और कहानी है, पेशवाओं के प्रधान न्यायाधीश थे राम शास्त्री।
अच्छा।
उनकी पत्नी एक बार राजमहल से कुछ महंगे तोहफे ले आई तो उन्होंने दरवाजा ही बंद कर लिया।
क्या बात है।
और कहा कि भाई, ब्राह्मण पत्नी का आदर्श अपरिग्रह है, जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करना, सादगी से रहना, वरना वो भी द्रोणाचार्य की तरह दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे, अपनी आजादी खो देंगे।
तो ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है, इनका आज भी महत्व है, जैसे लेख में आश्रमों का जिक्र है।
हाँ बिल्कुल, गांधी जी का साबरमती आश्रम हो, या विनोबा का पवनार आश्रम, या फिर शांति कुंज, इन जगहों पर छोटे से छोटा काम,
जैसे
यहाँ तक कि शौचालय की सफाई या रात को पहरा देना, ये सब काम सबको खुद करने पड़ते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं।
अच्छा।
और गुरुद्वारों में आज भी देखिए आप, बड़े बड़े लोग भी जूते साफ करते हैं, सीढ़ियां पोंछते हैं, ये सब तरीके हैं अपने अंदर के अहंकार को गलाने के।
अहंकार को जोंक की तरह बताया गया लेख में।
हाँ?
जिसे हटाने के लिए छोटे काम रूपी नमक चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प उपमा है।
बिल्कुल। और सिख गुरु अर्जुन देव का उदाहरण भी बहुत अहम है। गुरु रामदास ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत योग्य थे, बल्कि इसलिए कि वो सबसे ज्यादा विनम्र थे, निष्प्रिय थे और अनुशासन का पालन करते थे।
अच्छा, तो योग्यता से ज्यादा विनम्रता को महत्व दिया।
हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में असली परख सांसारिक काबिलियत की नहीं होती, वहां अंदरूनी गुणों की परख होती है और इसमें निरहंकारिता यानी अहंकार का न होना वो सबसे ऊपर है।
और लेख में एक बात और कही गई है, मैं की जगह हम का इस्तेमाल करना। ये सुनने में तो छोटी सी बात लगती है, पर इसका क्या महत्व है?
नहीं, ये छोटी बात नहीं है, इसका बहुत गहरा महत्व है। लेख कहता है कि किसी भी सफलता का श्रेय वो हमेशा पूरी टीम या समूह को देना चाहिए, हम कहकर।
अच्छा।
मैं शब्द का इस्तेमाल वो सिर्फ तब हो जब अपनी कोई गलती या कमी माननी हो, क्योंकि सफलता तो सबके मिले जुले प्रयासों से ही मिलती है ना।
सही बात है।
तो अपने साथियों के प्रति स्नेह, सम्मान और खुद में अहंकार न होना, यही वो खाद पानी है जिससे आध्यात्मिक जीवन फलता फूलता है। जैसे कहते हैं ना, फल से लदा पेड़ हमेशा झुकता है, अकड़ते तो सिर्फ सूखे ठूंठ हैं।
तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ने की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो बाहरी योग्यता या पद प्रतिष्ठा में नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
बल्कि वो अंदर की निरहंकारिता, सेवा के भाव और सच्ची विनम्रता में है। यही गुण असली वरिष्ठता दिलाते हैं।
हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आज के जमाने में जहाँ हर तरफ खुद को आगे रखने का, सेल्फ प्रमोशन का इतना जोर है।
हाँ, ये तो है।
तो क्या हम वाकई अपने व्यक्तिगत जीवन में और सामूहिक जीवन में, खासकर जब किसी बड़े नेक काम के लिए साथ आए हों, इस निरहंकारी सेवा और सच्ची विनम्रता को फिर से जगह दे सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।